नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ईशान जैदी। आज फिर से हाजिर हुआ हूँ नई कहानी लेके, और कहानी का शीर्षक है लहर। इसके लेखक हैं असगर वजाहत। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी लहर। कोई 20 साल पहले की बात है। उन दिनों मैं पेरिस की एक अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स में पढ़ता था। लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से डिप्लोमा करने के बाद फ्रांस सरकार की स्कॉलरशिप पर मैं अपनी पढ़ाई का तीसरा साल पूरा कर चुका था। 3 साल बाद देश की ऐसी सख्त याद आई कि छात्रवृत्ति से बचाए पैसों से टिकट खरीदा और दिल्ली आ गया। दिल्ली में किसी कलाकार मित्र ने बताया कि आईफैक्स में नए पेंटर्स की नेशनल एग्जीबिशन हो रही है। यूरोप में भारी भरकम कपड़े पहनने से उबा मैं खद्दर के कुर्ते पाजामे और कोल्हापुरी चप्पल में आईफैक्स चला गया। सामने ही पहला इनाम पाई पेंटिंग लगी थी। लगा काम देखा हुआ है। दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद भी पता न चला कि किसका काम है। मैं नजदीक गया, नाम पढ़ा रजनीकर। अरे ये तो वही लड़का है जो लखनऊ में मुझसे 1 साल जूनियर था, और लखनऊ छोड़ते समय मैं अपनी बहुत सी पेंटिंग्स उसे रखने के लिए दे आया था। मैं कुछ उधेड़ बुन में था कि एक लड़का मेरे पैरों पर झुक गया। पैर पकड़े पकड़े उसने कहा, दादा आप कब आए? मैं तो पहचान भी ना पाता अगर कहीं और, रजनीकर बोलता रहा, लेकिन मैं कुछ सुन ना सका क्योंकि सामने जो चित्र लगा था वो उन्हीं में से एक था जो मैं उसको दे आया था। वो खड़ा हो गया। दादा, उसके स्वर में याचना, क्षमा, अपराध स्वीकार और पता नहीं क्या क्या था। मैं उससे यह कह ना सका कि यह मेरी पेंटिंग है, यह भी ना कह सका कि उसने ऐसा क्यों किया। मैं बस मुस्कुरा दिया क्योंकि मेरी नजर में मेरा और उसका वो काम सिर्फ एक अच्छी कोशिश थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उस घटना के 10 साल के अंदर ही रजनीकर जाना माना पेंटर हो गया था। वो कई अकादमियों का मेंबर है, उसे कई सम्मान मिल चुके हैं, वो कई जूरियों का मेंबर रहा है, वह देश के उच्च कला सर्किल में आ गया है। अभी कुछ साल पहले मिला था तो बोला, दादा आपने पेंट करना छोड़ दिया, आपकी त्रिनालय में कुछ भेजिए ना, मैं जूरी में हूं। मैं उसकी इस बात पर हंस सकता होता तो हंसकर लोटपोट हो गया होता। मैंने कहा, भाई अच्छा काम देखने को बहुत है, मैं तो उसे देखता हूं और खुश रहता हूं। आप डिजाइनिंग की तरफ निकल गए? वो बोला, उन दिनों मैं न्यूयॉर्क के फैशन डिजाइनर किटी एंड कैट के साथ काम करता था। यह भी पुरानी ही बात है, यह तो नहीं कह सकता कि मैं फैशन डिजाइनिंग में सफल नहीं हुआ, क्योंकि आज तक किटी एंड कैट का जेम्स किलगे कभी कभी फोन करके कहता है, आदि व्हाई डोंट यू ज्वाइन मी। मैं अब भी क्या ज्वाइन करूं? वहां काम करते करते धीरे धीरे यह लगा कि यार सब क्यों कर रहा हूं, कोई उचित जवाब समझ में ना आया। पैसा तो खूब था पर और क्या था। न्यूयॉर्क छोड़ा तो फिर पेरिस आ गया। पेंटिंग करना छोड़ चुका था, फैशन डिजाइनिंग करना ना चाहता था। सोचा रेस्टोरेशन ऑफ एंशिएंट वॉल पेंटिंग्स में कुछ करना चाहिए। 1 साल का डिप्लोमा किया तो यूनिसेफ में काम मिल गया। इंडोनेशिया चला गया, वहां से चीन भी जाना हुआ। इन्हीं दिनों तीसरी दुनिया और यूनेस्को की रस्साकशी देखी, राजनैतिक स्वार्थों की आंच में जलती अमूल्य कलाकृतियां देखी। प्रोग्राम के फ्रेंच डायरेक्टर ने साफ कहा, आदि हम राजनैतिक स्थितियों या दबावों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, वैसे भी कला ने हमेशा सत्ताओं के अधीन काम किया है, वह चाहे चर्च की सत्ता हो या पूंजीवाद की सत्ता या समाजवाद की सत्ता। राजनैतिक कारणों से इंडोनेशिया का काम बंद हुआ तो मैं एक खाली बर्तन जैसा था। पता नहीं क्यों कुछ करने की इच्छा ही नहीं थी। अपने बैंक का हिसाब किताब देखा तो 15 साल में खासी बड़ी रकम जमा हो गई थी, उसे समेटा और दिल्ली आ गया। उन दिनों दिल्ली की सबसे बड़ी एजेंसी डेवलप हुआ करती थी। संतोष चैटर्जी एमडी थे, उन्होंने मुझे डिजाइन डिपार्टमेंट का हेड बनने का ऑफर दिया। मैंने बेदिली से डेवलप ज्वाइन कर ली। सोचा, जब किसी ना किसी सत्ता के अधीन काम करना है तो क्यों ना बाजार की सत्ता के अधीन रहूं। डेवलप में मेरा काम इतना पसंद किया गया कि हर साल हजारों रुपए के इंक्रीमेंट मिलने लगे। लेकिन मुश्किल यह थी कि मेरे सबसे घटिया काम पसंद किए जाते थे। वे लाखों की संख्या में छपते थे, उन पर अवार्ड मिलता था और अवार्ड मुझे ले के जाना पड़ता था। धीरे धीरे यह स्थिति असहनीय हो गई। मैंने डेवलप छोड़ दी। चैटर्जी की समझ में यह बिल्कुल ना आया, ना उन्हें समझाना चाहता था कि मैंने यह फैसला क्यों किया है। चैटर्जी ने कहा, तुम सिर्फ कंसल्टेंट हो जाओ, हफ्ते में एक बार आओ। पर मन उखड़ा तो उखड़ता चला गया। एजेंसी का काम छोड़ने के बाद मैंने सफेद कागज और स्केच पेन की तरफ देखना छोड़ दिया। मैं आंखें बंद किए उन सुंदर चित्रों को देखा करता था जो मैंने टेट गैलरी या लूर्व में देखे थे। वेनिस की गलियों में घूमा करता था, विशाल गिरजाघरों की छतों और दीवारों पर भटका रहता था। सोचता था, वहां कला है, वही कला है। जब तक जिंदा हूं, श्रेष्ठतम कला और सुंदरता से अभिभूत रहूं। घटिया काम करना या देखना बेकार है। कला तो एक नजरिया है, कला जिंदगी गुजारने का एक तरीका है। कला अपनी और अपने परिवेश की सुंदरता को बनाए रखना है और विकसित करते रहना भी है। कला का कोई स्थूल अर्थ नहीं है। चित्र बनाने, स्कल्पचर बनाने तक कला को सीमित कर देना या उसी को कला समझना तो मूर्खता है। मैं उस मूर्खता से निकल आया था। मैंने खुशी थी कि मैंने सबसे बड़े कलाकार यानी प्रकृति को पहचान लिया और मैं खुश हूं। एजेंसी की नौकरी छोड़ने के बाद पता नहीं क्यों, हो सकता है शायद लंबे समय तक फ्लैटों में रहते रहते तंग आ गया था। यह ख्याल आया कि अपने लिए एक मकान बनाऊं। 25-26 साल से मुझे जो भी अनुभव हुए थे, दुनिया घूमकर जो भी मैंने देखा था और रहन सहन की जो भारतीय आवश्यकताएं या परंपराएं थी, उन्हें मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने लिए घर का नक्शा बनाया था। एक विशाल पार्क के बिल्कुल सामने जगह खरीदी और चाव से मकान बनवाता रहा। मकान जब बन गया तो मुझे अपने हर काम की तरह एक शुरुआत लगा। यह बात दूसरी है कि स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर वालों ने उसे पारंपरिक भारतीय भवन निर्माण की कला की एक जीवंत शैली माना। उसके बारे में लेख लिखे गए। अब तक आर्किटेक्चर के लड़के लड़कियां घर देखने चले आते थे। बहरहाल अब मैं अपने घर में गणेश के साथ रहता हूं। गणेश को भी मेरे साथ 8 साल हो गए हैं। काजीपुर के एक गांव का है। वो अब मेरी आदतों से इतना परिचित है जितना कोई अपने आप से भी नहीं होता। सुबह उठकर बेडरूम में चाय, फिर नहाना, फिर सामने वाले पार्क में 1 घंटा लंबी सैर, फिर माली के साथ कंपाउंड के पेड़ पौधों की देखभाल, फिर गाड़ी की सफाई, फिर बाहर जाने के लिए तैयार होना, फिर IIC की लाइब्रेरी में 12:30 तक अखबार पत्रिकाएं देखना, वहां के बार में एक बियर पीना और दिन का हल्का लंच लेकर घर वापस। दोपहर में 1 घंटे आराम, फिर क्लब में टेनिस, वापसी पर विस्की, अक्सर दोस्तों का जमावड़ा, रात का खाना और कुछ पढ़कर सो जाना। वैसे मेरी जिंदगी की अपनी अलग रफ्तार है। बहुत खुशी होती है कि कई बार शादी से बाल बाल बच गया। अगर कहीं वो दुर्घटना घट गई होती तो पता नहीं क्या होता। शादी के सिलसिले में अपने साथ बनाए गए आदर्श को मैंने गणेश के लिए मान नहीं माना। उसकी शादी पिछले ही साल लगभग मैंने ही करवाई। सुबह का 8 बजा है। दरवाजे और खिड़कियों से धूप सीधे ड्राइंग रूम के मरून रंगों वाले अफगानी कालीन पर एक दिलचस्प पैटर्न बना रही है। हरे रंग के पारदर्शी पत्थर की नीची मेज पर धूप का एक टुकड़ा चमक रहा है। दीवारों पर बने उड़ीसा के लोक चित्र चुपचाप अपनी पैनी आंखों से धूप को इस तरह देख रहे हैं जैसे अनधिकार ही वहां आ गई हो। कांसे की बनी बड़ी मूर्ति जो मोहनजोदाड़ो की नर्तकी की अनुकृति है, चुपचाप खड़ी है, शायद शताब्दियों से इस इंतजार में कि वह क्षण आए जो आने वाला है। दीवार में बने ताकों के बीच लगी कठपुतलियों के कान खड़े हो गए जब सामने वाले दरवाजे से गणेश की पत्नी, जो रंग बिरंगी गवारू साड़ी का लंबा घूंघट निकाले थी, अंदर आई। मुझे ड्राइंग रूम में बैठा देखकर एक क्षण लौटकर पिछले दरवाजे से सीधे सर्वेंट रूम में जाने को हुई। फिर मेरे कहने पर कि जाओ जाओ निकल जाओ, उससे उसने तेजी से पैर बढ़ाए। पैरों के तलवों का लाल रंग जैसे सफेद संगमरमर के फर्श पर लगा छाप छोड़ रहा हो। पायलों की मध्यम आवाज को उसने जानबूझकर दबा लिया। पैरों की उंगलियों में पड़े बिछुए और छल्ले चमक गए। वह बनी बनाई कलाकृति किसी को पता ना था, फिर भी अधूरी थी। घर बार जोरू जाते से विमुक्त रहने वाले मेरे जैसे व्यक्ति के लिए यह एक अनुभव था। यह दृश्य मेरी मनपसंद पेंटिंग्स में शामिल हो गया था। मैं विचारों से इसे कई कई तरह के कोणों से देखा करता था। कभी इस पेंटिंग में नए लाल रंगा देता था, कभी प्रकाश आने की दिशा बदल देता था, कभी गति बढ़ा देता था। हर बार यह पेंटिंग नया मजा देती। 10 साल से कुछ ना करने के बावजूद मैं इन सवालों से बच नहीं सकता हूं कि मैं कुछ क्यों नहीं करता। दोस्त अहबाब जिनकी कमी नहीं है अक्सर पूछते हैं, आश्चर्य इस बात पर होता है अब तक कि मैं कुछ क्यों नहीं करता। पेंट क्यों नहीं करता, रेखांकन क्यों नहीं करता। मैं कभी हंसकर जवाब देता हूं कि यार दुनिया में कूड़े के वैसे ही बड़े बड़े ढेर लगे हैं, मैं उन्हें बढ़ाना नहीं चाहता। कूड़े के ढेर देखने हो तो आर्ट गैलरीज में चले जाओ। ऐसा ऐसा पेंटर मिल जाएगा जो लाइन खींचना तक नहीं जानता और मशहूर है। नेशनल पेपर का एक आर्ट क्रिटिक कंपोजिशन की ABC नहीं जानता और कला का बहुत बड़ा पारखी है। सेठ साहूकार आलू प्याज की तरह थोक में प्रदर्शनी की सभी पेंटिंग्स खरीद लेते हैं। एक भयानक मीडियोक्रिटी का माहौल है। सब कुछ मेरे बिना आराम से चल रहा है, चलने दो। दोस्त कहते हैं ठीक है तुम अपने लिए बनाओ, अपने लिए इसलिए कि तुम कलाकार हो। दुनिया में कला की कमी नहीं है, फिर मास्टर्स को तुम लोग क्यों भूल जाते हो। उनसे अच्छा कोई नहीं बना सकता तो क्यों बनाएं? डॉक्टर ने कहा आप बनाएं। काम न करने के पीछे मैंने हो सकता है जो तर्क सोचे हैं वो एक तरह के प्रतिरोध हो या पलायन हो, जो कुछ भी हो मैं खुश हूं। हां कभी कभी इस खुशी के पीछे एक स्वर ऐसा सुनाई पड़ता है जो मुझे पसंद नहीं है, सफेद कागज। कागज से मैं डरने तो नहीं असुविधा महसूस करने लग गया हूं। सफेद कागज देखते ही मेरी कल्पना उसमें फॉर्म और रंगों का संयोजन करने लगती है। मैं सोचता हूं 10 साल बाद अगर ब्रश उठाया तो पता नहीं क्या होगा। अब ना तो वह अभ्यास रह गया और ना विश्वास जो पहले था, ना वह इग्नोरेंस के कारण पैदा होने वाला साहस बचा है और ना शुरुआती तड़प है, जिसके चलते मैं 10-10 घंटे पेंट करता रहता था। कभी लगता वो जुनून ही नहीं बचा, वह पागलपन ही शेष नहीं है। जो था इसकी वजह क्या है, बढ़ती हुई उम्र? 60 पार कर लिया है मैंने। शादी के कुछ ही महीनों बाद गणेश की पत्नी गर्भवती हो गई। मैं गणेश उसे के साथ नर्सिंग होम ले गया। दवाएं, इंजेक्शन, खाना पीना, सबके ध्यान रखने का काम गणेश को सौंपकर मैं भी खुद ये मालूम करता रहता था वैसा करती है या नहीं जैसे डॉक्टर ने कहा है। उसके फूले हुए पेट को मैं रहस्य और रोमांच के साथ देखता था। उससे कभी मैंने ये सब कुछ इतने नजदीक से नहीं देखा था। उसके हाव भाव में परिवर्तन आ रहा था और जब वह मां बनी और बच्ची पहली बार सर्वेंट रूम में आई तो गणेश की पत्नी का चेहरा भी एक पेंटिंग जैसा लगा। क्या कोई कलाकार उस प्रक्रिया को पेंट कर सकता है जिससे गुजरता उसका चेहरा यहां तक पहुंचा है। बच्ची का नाम मैंने लहर रखा, सुंदरता और गति में मेरे आदर्श को संहत करने वाला नाम। गणेश लहर से मुझे दादा कहलवाने की कोशिश करता था। अब शाम मैं जब लौटता तो लहर के साथ एक घंटा बिताना अनिवार्य हो गया था। उसकी बातें समझना, उसका हंसना, उसका चलना सीखना, उसकी जिद और उसका रोना, सब कुछ मुझे उद्वेलित कर देता था। वह और बड़ी हुई तो मेरे साथ पार्क जाने लगी। मेरे पार्क जाने से पहले गणेश उसे तैयार करके ड्राइंग रूम में ले आता था। वह मेरी छड़ी लेने की जिद करती थी, कभी गोद में आने की जिद करती थी। धीरे धीरे उसके अंदर भावनाओं का संचार हो रहा था। वह पहली बार बोली थी जब मुझे लगा था कि लहर की यह नई गति है, नई दिशा। पता नहीं वह मेरे साथ बड़ी हो रही थी या मैं उसके साथ छोटा हो रहा था। अगर मैं छोटा भी हो रहा था, बच्चा भी बन रहा था, तो यह मुझे पसंद आता था। उसके कहने पर मोर को पकड़ने की कोशिश, उसके कहने पर खरगोश के बच्चों को घास खिलाना, हिरन के कान सहलाना, कबूतरों को दाना खिलाना, कुत्ते की बोली बोलना, पेड़ों के झुरमुट में मोर खड़ा था। मैं धीरे धीरे लहर को उसके पास ले गया। मोर को देखकर वह खुशी से चीखी और मोर की तरफ दौड़ी। मोर उड़ गया, वह रोने लगी। मैं उसे चुप कराने की कोशिश करता रहा लेकिन कामयाब ना हुआ। वह पूरे रास्ते रोते रोते घर आई, अंदर भी रोती रही। उसकी मां ने उसे केला खिलाना चाहा पर वह रोती रही। मैंने चॉकलेट देनी चाही पर उसने न ली। गणेश ने कुत्ते की बोली बोली जिस पर वह आमतौर पर हंस देती, पर वह रोती रही, मोर मोर की रट लगाए हुए थी। अचानक मैंने पेस्टल कलर निकाले और तेजी से एक सफेद कागज पर मोर बना दिया। कागज पर बने मोर को देखकर उसका रोना कुछ थमा, सिसकियां बाकी रह गईं। फिर वह कागज पर बने मोर को देखने लगी। मैं भी हैरत से उस मोर को देख रहा था। उसके बाद मैं रुका नहीं। लहर की पसंद के सभी जानवर कागज पर उतरते चले गए। खुशी से मेरे हाथ कांपने लगे। कांपते हाथों से स्केचेस के कोने में मैंने अपने हस्ताक्षर किए और तारीख डालते हुए झुरझुरी आ गई। तो दोस्तों, आज की कहानी थी लहर, जिसके लेखक थे असगर वजाहत। उम्मीद करता हूं कि आप सबको आज की कहानी पसंद आई होगी। मैं ईशान जैदी हर रोज आपके लिए हमारे साहित्य के खजाने से कुछ गिने हुए नगीने लाने की पेशकश करता हूं और करता रहूंगा। तब तक के लिए शब बख़ैर। नमस्कार दोस्तों, मैं ईशान जैदी हाजिर हुआ हूं फिर से एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी का शीर्षक है आत्मसंगीत और इसे लिखा है श्री मुंशी प्रेमचंद ने। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी आत्मसंगीत। आधी रात थी, नदी का किनारा था, आकाश के तारे स्थिर थे और नदी में उनका प्रतिबिंब लहरों के साथ चंचल। एक स्वर्गीय संगीत की मनोहर और जीवनदायिनी प्राण पोषणी ध्वनियां इस निस्तब्ध और तमोमय दृश्य पर इस प्रकार छा रही थीं जैसे हृदय पर आशाएं छाई रहती हैं या मुखमंडल पर शोक। रानी मनोरमा ने आज गुरु दीक्षा ली थी। दिन भर दान और व्रत में व्यस्त रहने के बाद मीठी नींद की गोद में सो रही थी। अकस्मात उनकी आंखें खुली और ये मनोहर ध्वनियां कानों में पहुंची। वह व्याकुल हो गई जैसे दीपक को देखकर पतंगा। वह अधीर हो उठी जैसे खाड़ की गंध पाकर चींटी। वह उठी और द्वारपालों एवं चौकीदारों की दृष्टियां बचाती हुई राजमहल से बाहर निकल आईं। जैसे वेदनापूर्ण क्रंदन सुनकर आंखों से आंसू निकल जाते हैं। सरिता तट पर कटीली झाड़ियां थीं, ऊंचे कगारे थे, भयानक जंतु थे और उनकी डरावनी आवाजें। शव थे और उनसे भी अधिक भयंकर उनकी कल्पना। मनोरमा कोमलता और सुकुमारता की मूर्ति थी, परंतु उस मधुर संगीत का आकर्षण उसे तन्मयता की अवस्था में खींचे लिए जाता था। उसे आपदाओं का ध्यान न था। वह घंटों चलती रही, यहां तक कि मार्ग में नदी ने उसका गतिरोध किया। मनोरमा ने विवश होकर इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। किनारे पर एक नौका दिखाई दी। निकट जाकर बोली, माझी, मैं उस पार जाऊंगी। इस मनोहर राग ने मुझे व्याकुल कर दिया है। माझी ने कहा, रात को नाव नहीं ले खोल सकता। हवा तेज है और लहरें डरावनी, जान जोखिम है। माझी ने कहा, रात को नाव नहीं खोल सकता। हवा तेज है और लहरें डरावनी, जान जोखिम है। मनोरमा ने कहा, मैं रानी मनोरमा हूं, नाव खोल दें, मुंह मांगी मजदूरी दूंगी। माझी बोला, तब तो नाव किसी तरह नहीं खोल सकता, रानियों का इसमें निभा नहीं। मनोरमा ने कहा, चौधरी, तेरे पांव पड़ती हूं, शीघ्र नाव खोल दे, मेरे प्राण खींचे चले जाते हैं। माझी ने पूछा, क्या इनाम मिलेगा? मनोरमा बोली, जो तू मांगे। मांझी बोला, आप ही कह दें, गवार क्या जानूं कि रानियों से क्या चीज मांगनी चाहिए, कहीं कोई ऐसी चीज न मांग बैठूं जो आपकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध हो। मनोरमा बोली, मेरा ये हार अत्यंत मूल्यवान है, मैं इसे खेवे में देती हूं। मनोरमा ने गले से हार निकाला, उसकी चमक से मांझी का मुखमंडल प्रकाशित हो गया, वह कठोर और काला मुख जिस पर झुर्रियां पड़ी थीं। अचानक मनोरमा को ऐसा प्रतीत हुआ मानो संगीत की ध्वनि और निकट हो गई हो, कदाचित कोई पूर्ण ज्ञानी पुरुष आत्मानंद के आवेश में उस सरिता तट पर बैठा हुआ उस निस्तब्ध निशा को संगीत पूर्ण कर रहा है। रानी का हृदय उछलने लगा। आह, कितना मनोमुग्धर राग था। उसने अधीर होकर कहा, मांझी, अब देर ना कर, नाव खोल, मैं एक क्षण भी धीरज नहीं रख सकती। मांझी बोला, इस हार हो लेकर मैं क्या करूंगा? मनोरमा, सच्चे मोती हैं। मांझी बोला, यह और भी विपत्ति है, माझिन गले में पहनकर पड़ोसियों को दिखाएगी, वह सब डाह से जलेंगी, उसे गालियां देंगी, कोई चोर देखेगा तो कोई उसकी छाती पर सांप लौटने लगेगा, मेरी सुनसान झोपड़ी पर दिन दहाड़े डाका पड़ जाएगा, लोग चोरी का अपराध लगाएंगे। नहीं, मुझे यह हार नहीं चाहिए। मनोरमा ने कहा, तो जो कुछ तू मांग वही दूंगी, लेकिन देर ना कर, मुझे अब धैर्य नहीं है, प्रतीक्षा करने की तनिक भी शक्ति नहीं, इन राग की एक एक तान मेरी आत्मा को तड़पा देती है। मांझी बोला, इससे भी अच्छी कोई चीज दीजिए। मनोरमा ने कहा, अरे निर्दयी, तू मुझे बातों में लगाए रखना चाहता है, मैं जो देती वह लेता नहीं, स्वयं मांगता नहीं, तुझे क्या मालूम मेरे हृदय की इस समय क्या दशा हो रही है, मैं इस आत्मिक पदार्थ पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकती हूं। मांझी बोला, और क्या दीजिएगा? मनोरमा ने कहा, मेरे पास इससे बहुमूल्य और कोई वस्तु नहीं है, लेकिन तू अभी नाव खोल दे तो प्रतिज्ञा करती हूं कि तुझे अपना महल दे दूंगी, जिसे देखने के लिए कदाचित तू भी कभी गया हो, विशुद्ध श्वेत पत्थर से बना है, भारत में इसकी तुलना नहीं। मांझी हंसते हुए बोला, उस महल में रहकर मुझे क्या आनंद मिलेगा, उल्टे मेरे भाई बंधु शत्रु हो जाएंगे, इस नौका पर अंधेरी रात में भी मुझे भय न लगता, आंधी चलती रहती है और मैं इस पर पड़ा रहता हूं, किंतु वह महल तो दिन ही में फाड़ खाएगा, मेरे घर के आदमी तो उसके एक कोने में समा जाएंगे, और आदमी कहां से लाऊंगा, मेरे नौकर चाकर कहां हैं, इतना माल असबाब कहां, उसकी सफाई और मरम्मत कहां से कराऊंगा, उसकी फुलवारियां सूख जाएंगी, उसकी क्यारियों में गीदड़ बोलेंगे और अटारियों पर कबूतर और अबाबीलें घोंसले बनाएंगी। मनोरमा अचानक एक तन्मय अवस्था में उछल पड़ी। उसे प्रतीत हुआ कि संगीत निकटत आ रहा है। उसकी सुंदरता और आनंद अधिक प्रखर हो गया था, जैसे बत्ती उकसा देने से दीपक अधिक प्रकाशवान हो जाता है। पहले चित्ताकर्षक था तो अब आवेशजनक हो गया था। मनोरमा ने व्याकुल होकर कहा, आह तू फिर अपने मुंह से क्यों कुछ नहीं मांगता, आह कितना विरागजनक राग है, कितना विह्वल करने वाला, मैं अब तनिक धीरज नहीं धर सकती। पानी उतार में जाने के लिए जितना व्याकुल होता है, श्वास हवा के लिए जितनी विकल होती है, गंध उड़ जाने के लिए जितनी व्याकुल होती है, मैं उस स्वर्गीय संगीत के लिए उतनी व्याकुल हूं। उस संगीत में कोयल किसी मस्ती है, पपीहे किसी वेदना है, श्याम किसी विवलता है, इससे झरनों का सा जोर है, आंधी का सा बल है, इसमें वह सब है, इसमें विवेकाग्नि प्रज्वलित होती, जिससे आत्मसमाहित होती है और अंतःकरण पवित्र होता है। मांझी, अब क्षण का भी विलंब मेरे लिए मृत्यु की यंत्रणा है, शीघ्र नौका खोल। जिस सुमन की यह सुगंध है, जिस दीपक की यह दीप्ति है, उस तक मुझे पहुंचा दे। मैं देख नहीं सकती, संगीत का रचयिता कहीं निकट ही बैठा हुआ है, बहुत निकट। मांझी बोला, आपका महल मेरे काम का नहीं, मेरी झोपड़ी उससे कहीं सुहावनी है। मनोरमा बोली, हाय तो अब तुझे क्या दूं, यह संगीत नहीं है, यह इस सुविशाल क्षेत्र की पवित्रता है, यह समस्त सुमन समूह का सौरभ है, समस्त मधुराओं मधुरताओं की माधुरी है, समस्त अवस्थाओं का सार है। नौका खोल, मैं जब जीऊंगी तेरी सेवा करूंगी, तेरे लिए पानी भरूंगी, तेरी झोंपड़ी बहाऊंगी। हां मैं तेरे मार्ग के कंकड़ चुनूंगी, तेरे झोंपड़े को फूलों से सजाऊंगी, तेरी माझिन के पैर मलूंगी। प्यारे माझी, यदि मेरे पास 100 जाने होती तो मैं संगीत के लिए अर्पण करती। ईश्वर के लिए मुझे निराश न कर, मेरे धैर्य का अंतिम बिंदु शुष्क हो गया, अब इस चाह में दाह है, अब यह सिर तेरे चरणों में है। यह कहते कहते मनोरमा एक विक्षिप्त की अवस्था में मांझी के निकट जाकर उसके पैरों पर गिर पड़ी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह संगीत आत्मा पर किसी प्रज्वलित प्रदीप की तरह ज्योति बरसाना हुआ मेरी ओर आ रहा है। उसे रोमांच हो आया, वह मस्त होकर झूमने लगी। ऐसा ज्ञात हुआ कि मैं हवा में उड़ी जाती हूं। उसे अपने पार्श्व देश में तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते थे। उस पर एक आम विस्मृत का भावावेश छा गया और अब वही मस्ताना संगीत, वही मनोहर राग उसके मुंह से निकलने लगा। वही अमृत की बूंदें उसके अंधरों से टपकने लगीं। वह स्वयं इस संगीत का स्रोत थी। नदी के पास से आने वाली ध्वनियां, प्राण पोषणी ध्वनियां उसी के मुंह से निकल रही थीं। मनोरमा का मुखमंडल चंद्रमा की तरह प्रकाशमान हो गया था और आंखों से प्रेम की किरणें निकल रही थीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी आत्मसंगीत। इसके लेखक थे महान लेखक श्री मुंशी प्रेमचंद। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सारी कहानियां मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, जो कि साहित्य के खजाने में कहीं छुपी हुई हैं। आज के लिए आपसे अलविदा कहता हूं। शब्बा खैर।